स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 119 का अध्ययन किया और आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 120 से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें, ग्रहण कर सकें। हम में से प्रत्येक के साथ हो और अपनी शांति हम पर प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम भजन संहिता 120 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है तीर्थ यात्रियों का जीवन यापन। इस भजन के साथ 15 भजनों अर्थात 120 से 134 भजन का एक नया वर्ग आरंभ होता है, जिन्हें हमारी बाइबल में यात्रा का गीत शीर्षक दिया गया है। इसका अनुवाद मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से किया है, धीरे धीरे बढ़ने वाले गीत, ऊंची गायन मंडली के गीत। एक विशिष्ट इब्रानी ज्ञाता ने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया, तीर्थ यात्रियों के कारवां के गीत या घर की यात्रा पर। ये 15 भजन यात्रा के गीत थे और मेरे विचार में इनको दो समयों पर काम में लिया जाता था। जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम लौटे तब उन्होंने मार्ग में ये भजन गाए थे। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद में भी यही शब्द चल दिया आया है। पहले महीने के पहले दिन वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। यह पद एज्रा की बेबीलोन से चलकर यरूशलेम पहुंचने की यात्रा का उल्लेख करता है। अतः इन भजनों को उस समय गाया जाता था जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे वर्ष में 3 बार यरूशलेम जाते थे कि परमेश्वर को बलि चढ़ाएं। परमेश्वर ने पुरुषों के लिए यह अनिवार्य कहा था और वे अपने साथ अपने अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। वे संपूर्ण सभ्य विश्वास में तितर बितर थे और यरूशलेम आते समय वे मार्ग में ये भजन गाते थे। एक दिन एक भजन, दूसरे दिन दूसरा भजन और तीसरे दिन तीसरा भजन, और इस प्रकार निकट आते आते अंत में भजन 134 जब वे परमेश्वर के पवित्र स्थान में उपस्थित होकर स्तुति करते थे तब भजन करते थे। यही कारण है कि इन भजनों को अवरोहण के गीत भी कहा गया है। आपको स्मरण होगा कि लूका रचित सुसमाचार में एक घटना का उल्लेख है कि यीशु जब 12 वर्ष का था तब वह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम पर्व मनाने के लिए गया था। उनकी यात्रा एक दिन की थी। वे सब एक साथ होकर चलते थे और यह सहभागिता और संबंधों के नवीनीकरण का एक अच्छा समय होता था। वे पुरानी बातों को याद करते थे और अपना हाल चाल सुनाते थे। वे इन भजनों को गाते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ते चले जाते थे। सब कारवाओं का समागम स्थल आज भी स्मरणीय है, जो यरूशलेम से एक दिन की यात्रा पर था। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 41 से 50 पद में व्यक्त है कि पर्व के बाद जब वे इस समागम स्थल पर लौटे तो यीशु उनके मध्य नहीं था, अतः उन्हें लौटकर यरूशलेम जाना पड़ा कि उसे खोजें। आप सोच रहे होंगे कि कैसे माने कि ये भजन इसी रूप में काम में लिए जा रहे थे। देखिए भजन संहिता 122 उसके 3 और 4 पद में, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे वर्ष में 3 बार वहां पर जाते थे। जब वे फसह, पेंतिकोस्त और झोपड़ियों का पर्व मनाने यरूशलेम जाते थे और परमेश्वर को धन्यवाद, आराधना और बलि चढ़ाते थे तो ये गीतों को भी गाते थे। इन 15 भजनों में आत्मिक अर्थ है। जी हाँ, यह एक रोचक बात है कि तालमुद के लेखकों ने जीवन को एक चढ़ाई कहा है। हम परमेश्वर के निकट पापी होकर आते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, उससे विलग और पृथक हैं। हम उसके पास उद्धार पाने आते हैं और मसीह यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते हुए शोधन पाते जाते हैं। यह एक सतत अवरोहण है। हमें आत्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ना है। मेरे मित्रों, हमें पिछले वर्ष की तुलना में आज बहुत आगे निकल जाना है। अब हम भजन संहिता 120 के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हम एक तीर्थ यात्री को देखते हैं कि वह कहाँ है। आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 120 निकालिए। उसके 1-7 पद में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाव के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। यह एक अति अद्भुत भजन है और आज के लिए प्रासंगिक भी है, विशेष करके इसराइल के लिए। इस भजन में तीर्थयात्री कहता है कि वह केदार के मेशेक में रहता था। मेशेक कौन था? वह येपेत का पुत्र था। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 पद में येपेत के पुत्रों की सूची दी गई है, गोमेर, मागोग, मार्दै, यावान, तुबुल, मेशेक और तिरास। इन्हीं से अन्य जातियां उत्पन्न हुई और आज इसराइल अन्य जातियों में तितर बितर है। वे मेशेक के देश में थे। केदार इश्माइल का पुत्र था। क्या इससे आपको कुछ स्मरण आता है? तीर्थयात्री अरबों के मध्य वास करते थे, यह आज भी है। देखिए पद 2 में वह पुकारता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। यह सुनकर तो नहीं लगता कि वह अच्छे पड़ोसियों के मध्य में था। उनकी जीभ छल से पूर्ण थी। मेशेक में रहने वाले इसराइली के विषय झूठी बातें कही जाती थी। मैं मानता हूँ कि यहूदियों की तुलना में अन्य किसी के विषय इतना झूठ नहीं कहा जाता था, बदनाम नहीं किया जाता था, सताया भी नहीं जाता था। आज अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कहा गया है और रोचक बात तो यह है कि यहूदी सब जातियों और देशों में निर्वाह कर चुके हैं, परंतु उनकी सदा ही आलोचना की गई है। यहूदी विरोध युगों में से चलता चला आ रहा है, परंतु वे फिर भी जीवित हैं। यहूदी अन्य जातियों में संसार में अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और झूठी बातें, झगड़े, तनाव, समस्या और बोझों के अधीन रहते हैं। यह तो आपके और मेरे लिए भी कहा जा सकता है। जी हाँ, वह तीर्थयात्री छली जीव वाले मनुष्य में ही नहीं युद्धग्रस्त संसार में रहता है। मुझको मेल के वैरियों के साथ बचना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। ऐसा तो आज भी हो रहा है, क्या यह सच नहीं है? धर्मशास्त्र को उत्तरकालीन आने वाले इस भजन को वर्तमान क्यों नहीं बोलते हैं या बताते हैं? यह भजन तो यहूदियों की आज की दशा प्रकट करता है। अब समय है कि वह अपनी परेशानियों को समेटकर यरूशलेम की ओर बढ़े। तीर्थयात्री अपने बोझ और तनावों को घर पर ही छोड़ देता है। मेशेक और केदार को छोड़कर वह यरूशलेम की ओर बढ़ता है कि अपने परमेश्वर की उपासना करे। मेरे प्रियो, यरूशलेम शांति का नगर था, परंतु आज वह स्थान ऐसा नहीं है। आज वह एक संकट का स्थान है, परंतु जैसा पूर्व में था वैसा ही वह भविष्य में भी होगा। भजन संहिता 121 अध्याय उसका विषय है, तीर्थयात्री यहूदा के पर्वतों को देखता है। यह अवरोहण का दूसरा भजन है। यात्री आराधना हेतु यरूशलेम जा रहा है। हमने उसकी आवासीय परिस्थितियों को देखा है, जिसे त्याग वह यरूशलेम की ओर अग्रसर है। इस भजन में वह दूर से यरूशलेम के पर्वतों को देखता है। आइए हम भजन संहिता 121 के 1 पद को पढ़ें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरे विचार में इस पद को बदलना उचित होगा, क्योंकि वह वास्तव में प्रश्न कर रहा है। वह सहायता के लिए नहीं, परमेश्वर को निहारने के लिए पर्वतों की ओर दृष्टिपात कर रहा है। क्या मैं पर्वतों की ओर निहारूं? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? इसका उत्तर अगले पद में है। आइए हम भजन संहिता 121 के 2 पद को पढ़ें। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। उसकी सहायता पर्वतों से नहीं, परमेश्वर से आती है। तीर्थयात्री यरूशलेम आते हैं तो उन्हें पहाड़ों पर ही चढ़ना होता है, चाहे वे पूर्व से आए, चाहे पश्चिम से, चाहे उत्तर से या दक्षिण से। बहुत सारे लोग आज भी यरूशलेम जाते हैं उन स्थानों को देखने के लिए, और तीर्थयात्री सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ को देखते हैं। तीर्थयात्री को जब पर्वत दिखाई देने लगते हैं, तब उसकी दृष्टि अन्य जाति उपासना स्थलों पर भी पड़ती है। अन्य जातियों ने पहाड़ों पर ही अपने उपासनालय बनाए थे। वह कहता है, क्या मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊं? क्या वहां से मेरी सहायता आती है? उसकी सहायता पहाड़ों पर से नहीं आती है। इस विषय पर यर्मिया ने कहा है, 3:23 में, निश्चय ही पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इसराइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। जी हाँ, यह तीर्थयात्री के भजन में है जब वह यरूशलेम के निकट आ गया है। हम भजन संहिता 121 उसके 3:4 में पढ़ते हैं, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इसराइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। वह तेरे पांव को टलने न देगा, अर्थात वह तुझे लड़खड़ाने न देगा। हम में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वे लड़खड़ाने से लगते हैं उम्र की वजह से। मैंने अपने में भी देखा है कि जब मैं कमजोर पड़ता हूं तो मैं दृढ़ खड़ा नहीं रह पाता हूं जैसे पहले था। भजन संहिता 121 उसके 6:8 में लिखा है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं आपको पद 3-8 की कुछ भिन्न अनुवाद देना चाहता हूँ। वह तेरे पांव को डगमगाने न देगा, तेरा रक्षक नींद की झपकी भी न लेगा। देख, इसराइल का रक्षक न तो ऊँगता है और न ही सोता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिने हाथ पर तेरी छांव। न तो दिन में सूर्य और न रात में चांद तुझे हानि पहुंचा पाएगा। परमेश्वर तुझे हर बुराई से बचा कर रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा अब और सदा के लिए तेरा जाना और आना सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, यह तीर्थ यात्री बलवर्धन के लिए पहाड़ों की ओर नहीं देख रहा है, वह यहोवा को सहायता हेतु निहार रहा है। यहोवा उसका रक्षक है। आप देखेंगे कि पद 7-8 में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यह परमेश्वर का रक्षक अर्थात सामर्थ्य है। वह आपकी भी रक्षा करता है। पहला पत्रस 1:5 में वह कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। फल और सब्जियों के परिरक्षण के दो उपाय हैं, चीनी में या सिरके में। अनेक विश्वासी दोनों ही उपायों से सुरक्षित हैं। चीनी में सुरक्षित विश्वासी मधुर स्वभाव के हैं, कुछ विश्वासी सिरके में सुरक्षित हैं और यह आत्मव्यक्त है। तीर्थयात्री यरूशलेम की ओर अग्रसर है, वह पहाड़ों में चल रहा है और मार्ग में रुकता जाता है। उस समय होटल नहीं थे, उन्हें तो तंबू डालकर ही रुकना होता था, और वे अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर की ओर निहारते थे। यह कैसा महिमामय आश्वासन है। जी हाँ, यहाँ लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वह मेरे पांव को टलने न देगा। इसके संदर्भ धर्मशास्त्र के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। नीति वचन 3:26 में लिखा है, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। भजन संहिता 37:24 में लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। 1 Samuel 2:9 में हन्ना ने कहा, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। बाइबल में अंतिम आशीष वचन यहूदा की पत्री में है 24:25 में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। वह हमारी सुरक्षा करने में योग्य है। वह इसराइल का और आज अपनों का भी रक्षक है। ध्यान रखें कि वह हमें दिन रात संभालता है। वह न तो सोता है और न ही ऊँगता है। जब वे बीहड़ में तंबू लगाकर रात में सोते थे तब परमेश्वर जाकर उनकी रक्षा करता था। न तो दिन को धूप और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। वे कभी कभी तेज धूप में यात्रा करते थे, वहां धूप की गर्मी बहुत अधिक होती है। परमेश्वर कहता है कि वह चिलचिलाती धूप में भी उनकी रक्षा करेगा, परंतु रात में चांदनी का अर्थ क्या है? मैं भजनकार का अर्थ तो नहीं जानता, परंतु रोमी विचारों के अनुसार यह माना जाता है कि चांदनी के प्रभाव से मनुष्य पागल हो जाता है, परंतु परमेश्वर रक्षा करता है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करे, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 121 समाप्त होता है। भजन 122 में हम देखते हैं जिसका विषय है तीर्थ यात्री यरूशलेम के प्रतिवेश में आता है। यह आरोहण का तीसरा भजन है। भजन संहिता 120 में हमने यहूदियों को यातना में देखा था, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में थे। भजनकार कहता है कि उसके बारे में परदेश में झूठी झूठी बातें उड़ाई जाती थी, परंतु वह इन सब बातों को भूलकर पर्व के लिए अपने परिवार के साथ यरूशलेम को जाता है। भजन संहिता 121 में वह यहूदा के पर्वतों को देख पा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और यरूशलेम पहुंचता है, जहां इसराइल के सब गोत्र पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं। भजन संहिता 122 उसके 1-4 पद में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इसराइल के लिए साक्षी है। मेरे मित्रों, थका हुआ तीर्थ यात्री लंबी यात्रा के बाद अंत में अपने प्रिय यरूशलेम नगर के फाटकों में खड़ा है। तीर्थ यात्री अपनी आंखें उठाकर मंदिर को देखते हैं जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है। सबके होठों पर एक पुकार है, आओ हम यहोवा के भवन की ओर चलें। यह सुंदर भजन भविष्यवाणी भी करता है। यह सहस्त्र वर्षीय राज्य का भजन है जब सब गोत्र यरूशलेम जाकर आराधना के लिए एकत्र होंगे। वे यरूशलेम से बाहर हैं और आज भी उन्हें पूरा यरूशलेम नगर प्राप्त नहीं है। वे आज मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। वहां के सब पवित्र स्थल अन्य जातियों के अधीन है। होशे 3 अध्याय उसके 4-5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोत या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। मेरे मित्रों, सहस्त्र वर्षीय यरूशलेम का उदय होगा और लौटने वाले गोत्र क्या देखेंगे? डॉक्टर गैबलिन कहते हैं, एक वैभवशाली नगर वस्तुकला की विशाल महान सुंदर नगरी ही नहीं वरन आत्मिकता में भी शोभायमान एक नगर होगा। उसका युद्ध समाप्त हो चुका है। वह झगड़ों और आक्रमणों में या उसके भय में अब नहीं है। वह मुक्त हो चुका है। यह सहस्त्र वर्षीय राज्य का यरूशलेम होगा। यह भजन कैसा भविष्य चित्रित करता है। भजन संहिता 122 यहां समाप्त होता है। अब भजन संहिता 123 में हम देखते हैं जिसका विषय है तीर्थ यात्री मंदिर को देखते हैं और सियोन पर्वत को भी और अंततः यरूशलेम की सुरक्षा में खड़े होते हैं। भजन संहिता 123-125 भी तीर्थ यात्रियों के भजन हैं और एक कहानी सुनाते हैं। भजन संहिता 123 को आशा की आंख कहा गया है, क्योंकि इसमें मंदिर दृष्टिगोचर है और इसराइल की संतान बड़ी आशा से परमेश्वर की ओर निगाह उठाते हैं। मंदिर परमेश्वर के निकट आने का मार्ग था। भजन संहिता 123 उसके 1 पद में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। भजनकार स्पष्ट करता है कि परमेश्वर मंदिर तक ही सीमित नहीं है, वह यरूशलेम में एक संदूक में बंद नहीं है। आलोचकों का कहना गलत है कि इसराइल परमेश्वर यहोवा को यरूशलेम के मंदिर में वास करने वाले एक स्थानीय देवता स्वरूप मानते थे। यह भजनकार अति स्पष्ट करता है कि इसराइल में कभी ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि वह कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान। जी हाँ, तीर्थयात्री मंदिर के परिवेश में तो हैं, परंतु वह आंखें स्वर्ग की ओर उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है। मंदिर तो मात्र एक मार्ग था। भजन संहिता 123 के दो पद में लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। नौकरी में आप अपने स्वामी को देखते हैं और समय के लिए घड़ी को, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में कर्मठ ठहरना चाहते हैं। हम में से कितने हैं जो यह मानकर जी रहे हैं कि परमेश्वर हमें सदैव देखता है। वह देखता है, हम उसकी दृष्टि में बने रहते हैं। भजन संहिता 123 के तीन पद में लिखा है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। इसराइल की संतान संसार में घृणा के पात्र थे और अब वे यरूशलेम आ रहे हैं। वे दया की याचना कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे पापी हैं और परमेश्वर की दया की आवश्यकता उनको है। वे अपनी प्रशंसा लिए यरूशलेम नहीं आए हैं। भजन संहिता 123 के चार पद में लिखा हुआ है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अब इसराइल की आंख यरूशलेम में है और स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को देख रहा है। क्या हम उसे निहारते हैं? क्या हम उस पर आशा रखते हैं, जिस प्रकार इसराइल कठिनाइयों के बावजूद भी उस पर रखता है? मेरे मित्रों, इस यात्रा गीत का समापन यहीं पर होता है और हमारे अध्ययन का समय भी यहीं पर होता है। इसलिए अब हम अपने अगले अध्ययन में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। प्रभु इस वचन के अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चाहे वो सुख हो, चाहे